نے پھر او این جی سی کو جوائن کیا تھا اور وہاں 28 ورس تک اپنی سروسز دی تھی. 1996 میں انہوں نے والنٹرلی ریٹائرمنٹ لے لیا, کیونکہ آپ کا اس سنستھان کے ساتھ میں 1962 کے ساتھ میں رجحان ہونے لگ گیا تھا, تو والنٹرلی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد میں آپ نے اپنی سیوائیں سمرپت کی. آپ نے بہار آسام اور گجرات میں اس سنستھا کے کئی سینٹرز استھاپت کیے, اور ابھی آپ ہم جہاں بیٹھے ہیں جس کو اکیڈمی کوآرڈینیٹر آف اکیڈمی فار اے بیٹر ورلڈ کہتے ہیں, اس کے آپ اکیڈمک کوآرڈینیٹر ہیں. اس سارے سنستھان میں جو ایجوکیشن کے لیے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں, اور سائنٹسٹ اینڈ انجینئرنگ ونگ کے آپ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. انڈو نیپال انوائرمنٹ اویئرنیس کمپین کے سمے میں انوائرمنٹ اویئرنیس کمپین کے لیے کئی یاترا ریلیز نکلی تھی اور آپ نے ان کو لیڈ کیا تھا. اسی کے اپلکش میں بھارت سرکار سے آپ کو پریاورن شری 1992 کی اپادھی دی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا آنر ہے جس کو سن کر آپ بھی تالی بجائیں گے. آپ نے کئی نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں, ودیشوں کے ٹور کیے ہیں. آپ نے کئی جگہ 200 قریب لیکچرز دیے ہیں او این جی سی این ٹی جیل این ٹی پی سی وغیرہ میں, اور نمبر آف ایگزیبیشنز ڈفرنٹ تھیمس پہ آپ نے تیار کیا, انڈسٹریل پیس, چلڈرن اپلیٹمنٹ, یوتھ ڈیولپمنٹ, انوائرمنٹ اویئرنیس, سائنس اینڈ اسپریچولیٹی, نیو ڈائریکشن ان ایجوکیشن, گلوبل کوآپریشن فار اے بیٹر ورلڈ, اسپریچل امپاورمنٹ. آج کے لیے آپ نے کہیں ڈفرنٹ تھیمس پہ ایگزیبیشنس وغیرہ تیار کی, اور چونکہ اس اکیڈمی میں ایڈلٹ ایجوکیشن دی جاتی ہے اس لیے یو این او نے بھی اس کے لیے ایس آر ڈی میں آپ اس سنستھا کو بہت پرتشٹھت کیا ہے. تو انہیں سب باتوں میں آپ کا پریچے دیتے ہوئے میں برادر بی کے موہن سنگھل سے نویدن کروں گا کہ اس وشے پر وہ اپنے وچار پرستت کریں.
آج کا وشے ہم سبھی کے جیون سے لگتا ہوا ہے, کیونکہ شاید ہی سنسار میں کوئی ایسا ہوگا, اور ہم لوگ تو اکثر کر کے جو یہاں پر پروگرام ہوتے ہیں جب پوچھتے ہیں, اور یہاں بھی آپ سب سے پوچھ رہے ہیں, یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں انہیں کبھی غصہ نہیں آتا تو وہ کرپیا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, سوبھاوک ہے, بڑا کٹھن ہے. کٹھن کیا آج اسمبھو ہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ جن پر گزر رہے ہیں چاہے ویکتیگت ہوں, ساماجک ہوں, ویوسائک پرستھتیاں ہوں, آرتھک ہوں, تو کہیں نہ کہیں ایسی پرستھتیاں ہوتی ہیں کہ کرودھ آتا ہی ہے, آ ہی جاتا ہے. ویسے کرودھ آنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں, لیکن دا روٹ آف دا اینگر, جو کرودھ آنے کا اگر ہم کہیں کہ ایک مکھیہ کارن, وہ کیا ہو سکتا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم سبھی انوبھوی ہیں, جب ہماری کوئی اچھا ہوتی ہے اور اس اچھا کا الگھن ہوتا ہے یا پورتی نہیں ہوتی ہے تو کرودھ آتا ہے, چاہے کسی کھیتر میں ہو. اور جب ابھی یہ بات بتا رہے تھے اینگر اور ڈی کی بات بتا رہے تھے تو مجھے ایک بات اس میں یاد آئی, ڈی ہی کیوں انہوں نے لیا, کیونکہ جب کرودھ آتا ہے کیسی ویکتی کی استھتی ہو جاتی ہے, ہم سبھی انوبھوی ہیں. کرودھ آتا ہے شریر کیسا ہو جاتا ہے, آنکھ کیسے ہو جاتی ہیں, لال ہو جاتی ہے, شریر بھی ایک دم سٹیف ہو جاتا ہے. کبھی کسی کو دیکھا بڑا شانتی اور پریم سے کرودھ کر رہا ہو؟ نہیں, بس میں یہ بولتا ہوں کانپنے لگے گا شریر, اور وہ شریر کا نا فزیکلی شریر ایک دم سٹیف ہو جائے گا, لیکن اس کی ڈیسیزن میکنگ پاور یا آتما یا اس کے سنسکار جو ہیں وہ سب وکر ہو جاتے ہیں, ٹیڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ جیسے کہ یہ اس کا پرتیک ہے. تو یہ شریر ایسا ہو جاتا ہے और जैसे कि उसकी आत्मा जो है ना वो टेढ़ी, तो ये क्या हो गया लेटर, तो शायद इसीलिए ही वो बोल रहे होंगे कि जब एंगर होता है ना तो एंगर से ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है डी, तो व्यक्ति क्या हो जाता है डेंजर। वही उस वक्त क्या है, वैसे नॉर्मल केस में हर व्यक्ति अपने को बड़ा स्मार्ट एक्टिव समझता है, हर वुमेन अपने को ब्यूटीफुल, स्वाभाविक है, मनुष्य रोज अपना प्रतिबिंब देखता है। लेकिन जब क्रोध आए उस समय अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखिए, तब व्यक्ति को एकदम लगेगा अरे मैं ऐसा हूं, अभी तक तो मैं समझता था मैं बड़ा स्मार्ट हूं और ब्यूटीफुल हूं, लेकिन जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को अपना ही चेहरा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये आज हम क्रोध के ऊपर थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे और कैसे इस क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की जाए। तो मुझे एक कहानी याद आती है छोटी सी जो हमने पढ़ी थी। एक व्यक्ति था, उसका बेटा था, बहुत लूज टेम्पर था, जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाता था। तो उस व्यक्ति ने कहा उसे एक बार बुला के, बेटा इधर आओ, हाँ तुम भी चाहते हो ना क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करें, कि हाँ पिताजी लेकिन क्या करूं बहुत क्रोध आ जाता है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज एक युक्ति बताता हूं। तो जो हमारे मकान की फेंस है, पहले पुराने जमाने में और ये वेस्टर्न स्टोरी है, तो लकड़ी की फेंस थी, तो जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील को फेंस, लकड़ी के जो फेंस है चार दीवारी है उसमें ठोक देना, 10 बार गुस्सा आए तो 10 कील ठोकना जितनी बार दिन में आए। तो उसने कहा ठीक है। पहले दिन उसने देखा जब भी गुस्सा आता था गिनता रहा और एक एक कील उसमें ठोकता रहा। पहले दिन करीब 50 बार उसे गुस्सा आया, लेकिन मॉनिटर किया उसने इतनी बार आया। दूसरी बार, दूसरे दिन थोड़ा कम हुआ, तीसरे दिन कम होता चला गया, ऐसे कुछ दिनों के बाद एक दिन ऐसा आया जब उसे एक भी कील ठोकने का उसमें मौका नहीं मिला। तो गया पिताजी के पास, पिताजी आज मुझे गुस्सा नहीं आया, आज एक भी कील नहीं ठोकी। तो उसने आदमी ने बोला अच्छा थैंक्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब ये करो कि जब गुस्सा अंदर आ रहा हो और गुस्से को तुम होल्ड करो, देखो और फिर एक एक कील को निकालते रहो। तो उसने कहा ठीक है। तो जब गुस्सा आता तो बाद में है, पहले तो मन में ही गुस्सा आता है। तो उसने देखा बस गुस्सा आए और मन के अंदर भाई उसका यही अटेंशन रहने लगा मुझे होल्ड करना है, लेकिन जब सक्सेसफुली होल्ड करता था एक कील निकाल देता था। तो उसने देखा कि ये कील ठोकना तो बड़ा आसान था, लेकिन ये कील को निकालना जो है ना ये बड़ा मेहनत का काम है। खैर वो निकालता रहा, ऐसे इस पर उसका अटेंशन रहा। थोड़े दिन बाद उसने धीरे 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 करके होल्ड करते, एक दिन ऐसा भी आया सारी कील निकल गई। तो उसने पिताजी को बोला कि अब मैं होल्ड करने में भी काफी वो हो गया हूं अनुभवी, तो ये कील अभी एक भी नहीं है। तो पिता ने फिर फर्दर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा चलो मेरे साथ चलो, उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के फेंस के पास ले गए। तो कहा देख रहे हो इसमें क्या है, कि हाँ क्या है, छेद, इतने सारे जो छेद हैं, कील निकाल भी लिया लेकिन छेद उसके अंदर रह गए। तो उन्होंने यही कहा देखो जब क्रोध आता है ना, अब क्रोध के बाद हम चाहे जितना सॉरी भी बोल लें, क्रोध के बाद हम चाहे जो भी माफी भी मांग लें, लेकिन क्रोध के वक्त जो इम्प्रेशन जो हम छोड़ देते हैं ना, वो आदमी कभी नहीं भूल पाता, हमेशा उसके दिमाग में छप जाता है ये। तो इससे हम सबको यही वो मिलता है कि ये जो एक इम्प्रेशन हो जाता है, वो कैसे हम वो इम्प्रेशन भी न रहे, तो उसके लिए यही अच्छा है कि क्रोध पर हम विजय प्राप्त करें। और आज हम उसके ऊपर ही हम लोग थोड़ा सा इस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्रोध करें। तो कुछ चीजें जो हैं वो वी विल गो लिटिल फास्ट। कहते तो है भगवान सर्वव्यापी है, कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो क्या सर्वव्यापी है? ये क्रोध हर मनुष्य, पुरुष, स्त्री, बच्चे, कास्ट, कम्युनिटी, कंट्री, रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिक्स, कोई भी प्रोफेशन वाला, हर एक के अंदर क्रोध पाया जाता है। तो सर्वव्यापी हो गया ना क्रोध। तो इस क्या करें इसके लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एंकर, हर एक का इंट्रोडक्शन होता है। तो इसका क्रोध का क्या इंट्रोडक्शन है आप देखिए, इट इज ए टेम्परेरी इंसैनिटी, छोटा टेम्परेरी एक पागलपन जैसा है। और क्रोध को कहा जाता है एक ऐसा एसिड है जैसे ना, तो एसिड दूसरे पर फेंका जाए दूसरा तो बाद में जलेगा, लेकिन जिस बर्तन में एसिड रहता है वो बर्तन पहले जलता रहता है। तो दूसरे को तो बाद में हम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर क्रोध है, अंदर ही अंदर हम खुद इसमें जलते रहते हैं। और इसके साथ साथ ये एक ऐसी इमोशन है जो सबसे पहले हमें नुकसान करती है, दूसरों को तो बाद में करती है। और इसमें क्या है कि ये हम सोचते हैं क्रोध से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन एक्चुअली क्रोध से प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आप देखिए यहां पर इतना बड़ा आप देख रहे हैं कारोबार चल रहा है, दो तीन दिन ही हुए होंगे, कहीं किसी को क्रोध करते देखा नहीं? क्योंकि यहां पर यह बताया गया है कि क्रोध से की बजाय अगर प्रेम से व्यवहार किया जाता है तो दूसरे को हम सदा के लिए जैसे अपने अधीन कर लेते हैं। तो शुरू से मुझे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जी के साथ भी रहने का मौका मिला। अब इतना बड़ा कारोबार सब कुछ, लेकिन लगभग 6-7 साल रहा मैं उनके साथ, एक बार भी मैंने उन्हें क्रोध करते नहीं देखा। बोला के देखिए क्या एक टेक्निक, बड़ा इजी टेक्निक, वो कहा करते थे कि अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड गिव करेक्शंस इन प्राइवेट। हर व्यक्ति जो भी काम करता है अच्छे और बुरे दोनों हो जाते हैं, कहीं सक्सेस होती है कहीं फेलियर होती है। तो सक्सेस को तो बाबा पब्लिकली बहुत बढ़िया, इसने ये काम किया है देखो कितना अच्छा है, कितना सेवा की है, कितना इसने इकोनॉमी की है, आदि आदि अप्रिशिएट तो बहुत। और अगर कहीं कुछ गलत होता था तो कभी भी किसी का वर्णन भी पब्लिकली नहीं करा, प्राइवेट अलग से, और अलग से भी बुला के पहले उसका मेंटल स्टेज उसको हाई करते, देखो तुमने ये काम किया इतने साल से, ये किया बहुत अच्छा, दिस इज वंडरफुल, ये हुआ। और जब माइंड एक रिसेप्टिव स्टेज में आ जाता है, उसके बाद आप किसी को भी कोई करेक्शन देंगे ना, इमीडिएटली द पर्सन विल एक्सेप्ट, वो स्वीकार कर लेगा, हाँ मेरे से ये गलती है। तो पर्पस तो ये है किसी को भी कोई काम गलत हो करेक्टिव मेजर, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड विच आईसा बाबा में भी और हमारी जो वरिष्ठ दादियां हैं, हमारे जो वरिष्ठ भाई बहन है सब में। इसीलिए यहां का कार्य सारा स्मूथ और बड़ा इस प्रकार से चल रहा है कि कोई भी ना अपने को प्रॉब्लम आती है ना दूसरे को। और जब क्रोध आता है ना, उसके बाद हम चाहे जितना अच्छा व्यवहार करें, लेकिन दूसरे के सामने हमारा वही रोल मॉडल, हमारी वही पिक्चर उसके सामने आएगी जब भी वो हमें देखेगा, वो क्रोधी के रूप में। और इसीलिए पुअर रोल मॉडल व्यक्ति बन जाता है। और इसके साथ साथ व्यक्ति जो है ना, खुद तो जलता ही है, और इट इज लाइक एन इन्फेक्शस डिजीज। एक क्रोध करेगा, दूसरा एक बार सहन करेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, वो लगातार क्रोध करता रहेगा तो जैसे इन्फेक्शस डिजीज की तरह वो दूसरे को लग जाता है। और इसलिए अभी जो है हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम ये क्रोध के ऊपर थोड़ा सा पहले माइल्ड इरिटेशन आएगा मन के अंदर, और वो माइल्ड इरिटेशन को अगर वहीं कंट्रोल नहीं किया तो वो ही आउट ऑफ कंट्रोल बर्स्ट के रूप में हो जाता है। तो ये इसमें तो बेस्ट यही है कि जब मन के अंदर ही आ रहा हो और बर्स्ट होने से पहले अगर उसको वहीं पर ही कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो आगे उसको वचन में और कर्म में और व्यवहार में वो नहीं आएगा। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसको थोड़ा सा और जान लेना। फिर अलग अलग फॉर्म्स उसकी क्या है एंगर की, ये इसके अंदर कुछ बताने का प्रयास किया गया है। इम्पेशेंस उतावली, ये भी एक एंगर का रूप है, लगता नहीं एंकर, बस जल्दी ये कर रहा है, ये करना है, बहुत उतावलपना, ये एक उसका बहुत माइल्ड फॉर्म है। फिर उसके बाद अगर कोई कार्य में नहीं होते फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी निराशा, ये भी आने लगती है। अब कोई मैच हो रहा है, परसों नर्सों भी बहुतों को निराशा, या इंडिया जब 2020 से बाहर हुआ तभी भी बहुतों को निराशा हुई होगी, क्यों? क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन, कहां लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे और कहां अभी हम लोग उसके सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके। और जब इंडिग्नेशन, कहीं पर थोड़ा सा अपमान होता है, कोई इग्नोर करता है हमें और टेक नोट नहीं लेता हमारा कॉग्निशंस, तो देखा गया है ये भी हमारे अंदर अंदर ही अंदर क्रोध की भावना पैदा कर देता है। और इफ समवन अराइव लेट, टाइम का कोई पाबंद नहीं होता है, तो ये सब कुछ बातें होती हैं, सब हम जानते हैं, इसलिए इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस न करके उसके सॉल्यूशन पर हम लोग ज्यादा वो करेंगे। और ये जैसा आप सबने बताया कैसा फेस लाल हो जाता है, कैसे शॉर्ट टेम्पर और पसीना कई बार आने लगता है, व्यक्ति श्वास तेजी से लेने लगता है आदि, और फीलिंग, और क्रोध के बाद हमेशा व्यक्ति को पश्चाताप की भावना होती है, उसे लगता है मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन जब क्रोध आता है उस वक्त वो आपे से बाहर हो जाता है। तो इसलिए ये सब जब बातें होती हैं तो इन फीलिंग के साथ हम कैसे डील करें, इसके लिए एक है एग्रेसिव वे, दूसरा है एजर्टिव वे, और तीसरा है सप्रेसिंग, दबा दें क्रोध को। ये तीन उसके मेथड है। तो कौन सा मेथड आपको ठीक लगता है? क्रोध आए हैं, अभी इसमें देखिएगा, एक तो एकदम बर्स्ट हो गए, या एक बिल्कुल क्रोध आ रहा है अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, मानो बॉस क्रोध कर रहा है और उस सामने तो क्या बोलेंगे, और अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, लेकिन ये आ रहा है कि बस ये क्या कर रहा है, क्या समझता है अपने को। और तीसरा एक है एजर्टिव वे, तो वो जो है किस प्रकार से हम क्रोध को कंट्रोल करके उसे प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट करें, ये है। तो उनकी क्या पहचान होगी, क्या मेथड है, वो आप गौर से देखिएगा। जो एजर्टिव करेंगे पीपल होंगे क्रोध को, तो बोलेंगे फर्मली एंड डायरेक्टली। अब दोनों का आप ये कंपैरिजन करिएगा, एक एजर्टिव पीपल और दूसरा एग्रेसिव पीपल। मोस्ट ऑफ अस आर इन विच कैटेगरी, एजर्टिव और एग्रेसिव? मोस्टली, क्योंकि अगर उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दिस इज द एग्रेशन, एग्रेसिव फॉर्म यह हो जाता है। तो इसमें देखिए, वो स्पीक लाउड, क्रोध होगा हमेशा व्यक्ति तेजी से बोलेगा तो उसी बात को, और बस बॉसी फॉर्म में बोलेगा, आई टेल यू, यू हैव टू डू इट, इस प्रकार से। इसका मतलब वो एग्रेसिव है। और जो एजर्टिव टाइप होंगे वो फर्मली बोलेंगे, डायरेक्ट आई टू आई करके बोलेंगे। और दूसरा जो एग्रेसिव होगा वो दूसरे की फीलिंग को केयर नहीं करेगा, उसे क्या महसूस हो रहा है, बस वो अपने को समझेगा मैं ये कर रहा हूं। लेकिन जो एजर्टिव टाइप के पीपल होंगे वो दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि अगर कहीं फेलियर है अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके अपने ऊपर भी, और दूसरे की फीलिंग को भी सम्मान देंगे। पर्पज यह है कि काम होना चाहिए, पर्पज यह है कि संबंधों में कटुता नहीं आनी चाहिए, पर्पज यह है कि जो भी हम वर्क करते हैं, दिस इज ओनली ए मिडिल मीडिया, द मेथोडोलॉजी जो हमें क्रोधित कर देती है। तो इसलिए, और जो एजर्टिव होंगे अपना फीलिंग को कामली, भाई आई एम नॉट हैप्पी विद यू, बड़े उसी को कामली क्वाइटली बोलना, और उसी को अगर एग्रेसिव वे में बोलेंगे वो दूसरे के दिल पर ना ऐसी छाप छोड़ देगी कि वो कोऑपरेटिव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक टीम वर्क का जब नहीं मिलता है बात, तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है। आप सब लोगों ने बचपन में एक खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। खरगोश और कछुए की रेस हुई तो कौन जीत गया? कछुआ। क्यों जीत गया? खरगोश तो बड़ा तेज दौड़ता है। खरगोश को यह था कि भाई मैं तो फास्ट हूं, चलो अभी तो बहुत दूर है, वहां धूप है, जरा पेड़ की मैं छाया में आराम कर लूं। बस वो थोड़ा सुस्त हो गया और कछुआ धीरे धीरे करके जीत गया। तो कछुए स्कोर जो है कछुए के फेवर में 1-0 हो गया। यहां तक तो कहानी हमने सुनी है और ये कर लिया जैसे भाई साहब ने बताया कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, ये कहानी आगे भी चलती है। आगे सुनी है? है? नहीं सुनी? आगे हम आपको दूसरी इसी की आगे कंटिन्यूटी में सुनाते हैं कि जब खरगोश हार गया तो उसने अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैं क्यों हार गया। तो उसने यही पाया कि एक तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था इस वजह से हार गया, और दूसरा थोड़ा लेजी था, सुस्त, मैंने सोचा चलो आराम कर लूं। तो उसने पक्का दृढ़ निश्चय किया कि मैं नहीं, अब रेस फिर से करेंगे और मैं इन दोनों चीजों पर अपनी वीकनेस पर विजय पाऊंगा। तो वो फिर कछुए के पास गया कि कल हम फिर दौड़ेंगे। तो उसने कहा चलो दौड़ लेते हैं। अगले दिन फिर दौड़े, लेकिन खरगोश ने पक्का कर लिया था कि मैं बस सुस्त नहीं होऊंगा। तो इसीलिए जैसे ही रेडी 1-2-3 हुआ, दोनों दौड़े और कछुआ तो धीरे धीरे, लेकिन खरगोश रुका नहीं एंड खरगोश रेस जीत गया। तो आज स्कोर कितना हो गया? 1-1 दोनों के फेवर में। फिर आज कछुआ सोचने लगा भी कल तक तो मैं 1-0 से अप था, आज 1-1 हो गया, और ऐसा क्या करें कि मैं फिर जीत जाऊं। तो उसने कहा हूं तो भाई मैं स्लो एनिमल, वैसे तो जीत नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ स्ट्रेटजी चेंज करूं। तो उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, उसके माइंड में आइडिया क्लिक किया, वो खरगोश के पास गया कि कल हम फिर दौड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा रोज हम इस डायरेक्शन में दौड़ते हैं, कल हम इस डायरेक्शन में दौड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट डे फिर रेस हुई, और जैसे ही 1-2-3 हुआ, खरगोश बड़ी तेजी से, उसने पक्का किया हुआ था मुझे सुस्त नहीं होना है, तो तेजी से चला। आगे जाके एक नदी मिली, नदी बह रही थी। अब खरगोश वहां तक तो तेजी से दौड़ गया, नदी के पास जाके वो देखने लगा क्या करूं भाई, कैसे इसे क्रॉस करूं। अब कछुआ धीरे 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 ही धीरे आया, उसने खरगोश की तरफ देखा, हाँ बच्चू बड़ा फास्ट चलते थे तुम, वो तो देख करके पानी में उतर गया एंड कछुआ, आज कछुआ जीत गया। कितना स्कोर हो गया कछुए के फेवर में? 2-1 हो गया। फिर आज खरगोश सोचने लगा भाई मैं फास्ट भी हूं फिर भी मैं हार गया, क्यों? क्योंकि हर एक के कोई स्ट्रांग पॉइंट होते हैं और कोई वीक पॉइंट होते हैं। तो इसीलिए अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करूं और वीकन योर वीक पॉइंट, तो शायद हम जीत जाए। और दोनों मिलते थे, तो आज फिर दोनों मिले शाम को, और उन्होंने कहा आपस में मिलके, देखो भाई कभी तुम जीतोगे कभी मैं जीतूंगा, कभी तुम हारोगे मैं हारूंगा, इसकी बजाय हम क्या करें कि हम जीवन में सदा जीतते रहें, कभी भी ना हारे। तो दोनों ने मिलके मीटिंग करी और उनको आइडिया सोचा, और उन्होंने अगले दिन अनाउंस करवा दिया भाई अभी तक तो क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल था, अब कल फाइनल होगा। तो अगले दिन फाइनल देखने के लिए सारे जंगल के सब इकट्ठे हो गए, और बस रेडी 1-2-3 हुआ। लेकिन उन लोगों ने जो स्ट्रेटजी सोची थी, यही सोची थी कि जमीन पर कौन तेज दौड़ता है? खरगोश। तो जमीन पर खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठा लिया, बड़ी तेजी से दौड़े, और जब पानी आया नदी आई तो समझ सकते हैं कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बिठा लिया। तो दे एक्चुअली रैन एज ए टीम, not against each other, but they worked as a team. They और जीवन में बस यही हम सब के साथ भी होता है. When we are fighting against each other, क्रोध आ जाता है, जीवन में हार जाते हैं, निराशा हो जाती है. But when we work as a team, और यही इंस्टीट्यूशन का मॉडल है, ब्रह्मा कुमारीज मॉडल ऑफ मैनेजमेंट. यहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं, देखते हैं, everybody is working as a team. बाबा भी थे, जा रहे हैं, यहां गंदा है, कचरा उठाया, साफ कर दिया. कहीं जरूरत हुई, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी दादी जी हिचकते नहीं थे, झाड़ू की जरूरत हुई झाड़ू से वहां साफ कर दिया. एवरी जॉब इज एवरीबडीज जॉब. और जब ये नहीं होता है तो हमारे जीवन में निराशा, क्रोध, अपमान की भावना आती है. तो इसीलिए एसर्टिव होने के लिए ये जरूरी है, सबका सहयोग लेके हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे तो जीवन में सदा हम सफलता को पाते रहेंगे. देन इसके ये थोड़ा सा फिजिकल इफेक्ट, इफेक्ट ऑन हार्ट क्या होता है, मोटे तौर पर कोरोनरी ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, और वो जो है ना वो सिकुड़ जाते हैं अक्सर करके. क्या होता है, क्रोध एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होती हैं, स्पाज्म क्रिएट होता है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है. और एंजाइना पेन होता है, इसलिए एंजियोग्राफी वगैरह. हमारे यहाँ एक डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं और आप में से काफी जानते होंगे, उन्होंने इस पर काफी रिसर्च की है और पाया है कि कैसे अपने लाइफस्टाइल के द्वारा हम अपना हार्ट प्रॉब्लम्स को कैसे जीत सकते हैं, उनको कम मिनिमाइज कर सकते हैं. ऐसे अनेक नॉट ओनली दो चार बट मोर देन 800 पेशेंट्स पर ये हुई. और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है, आपके भी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं महेश्वरी जी हैं, ही वाज आल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम. शायद उन्होंने सुनाया भी होगा, न सुनाया हो तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो सुनाए भी. तो इतना ये आर्टरी प्रॉब्लम्स उन्हें हो गई थी और हार्ट प्रॉब्लम. लेकिन यहां पर उन्होंने जब उसका करीब 5-6 महीना वो कोर्स किया, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, वो होता है न्यू लाइफस्टाइल, थोड़ा फूड हैबिट्स और थोड़ी एरोबिक एक्सरसाइजेस, उन तीन के द्वारा जिनके मोर देन 800 पेशेंट्स के जो एंजियोग्राफी ली गई थी कि अंदर ब्लॉकिंग 1, 2, 3, 4 90% 95, 98% तक ब्लॉक थे, जो उन्होंने विदाउट एनी बाईपास, उसके बाद उन्होंने दे अंडरवेंट दीज थिंग्स. और आज उसके बाद जब एंजियोग्राफी कराई, और एक दो की नहीं मैं बता रहा हूं आपको इतनी संख्या, फिर उनकी आर्टरीज किसी की 40% रह गई, किसी की 30% बिल्कुल खुल गई. एंड जो 10 कदम भी नहीं चल पाते थे वो आज 10 किलोमीटर भी चलते हैं. ऐसे ऐसे अनेक. तो ये है. और ये बंद क्यों होती है ब्लॉकिंग, इनका मुख्य कारण फूड हैबिट्स वगैरह और ये क्रोध, इन सब की वजह से. कभी आप उनसे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि द नेसेसरी क्वांटिटी ऑफ एड्रेनलिन एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर रिलीज, इससे बीपी बढ़ जाता है और ये पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस. तो ये तो हार्ट पर इफेक्ट होता है क्रोध का, और साथ ही साथ ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसमें एंगर रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, और इस कारण से ब्रेन में ब्लड सप्लाई होने से क्या होता है, जैसे हार्ट का है ये, ऐसे ब्रेन क्लॉटिंग. और आप समझते हैं कि अगर ब्रेन में सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है. और माइक्रो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो जो प्रेशर बढ़ेगा दे आर रप्चर्ड, और ये पैरालिसिस एंड स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह, ये सब, इन सब में ये क्रोध का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है. और मसल्स के ऊपर क्या होता है, व्यक्ति की मसल्स टेंशन इंक्रीजेज इन मोर देन 80 मसल्स शरीर की, और उसके कारण हेडेक. आप देखो बहुत आपने क्रोध किया, दूसरे पर कुछ असर होना हो, अपना तो सिर दर्द होने ही लगता है, और उसमें बॉडी के अन्य हिस्सों में बैकएक वगैरह भी, इम्यून सिस्टम, इनडाइजेशन, कब्ज, लूज मोशन, कई प्रकार की ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये उसके सब इफेक्ट है. और इस कारण से शरीर का एक एक सिस्टम क्रोध से प्रभावित होता है. और मेंटल स्ट्रेस वो तो फिजिकल है, और जो डिप्रेशन, टेंशन, वरीज, पीसलेसनेस, नेगेटिविटी माइंड के अंदर, फीलिंग ऑफ रिवेंज, बदला लेने की भावना आदि आदि, ये सब चीज हम सभी इन चीजों के अनुभवी हैं और ये आते हैं। और ट्रिगर, हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति वो हमारे क्रोध का कारण है, लेकिन वास्तव में क्रोध हमें कोई व्यक्ति नहीं दिलाता, बल्कि एक ही व्यक्ति को देख करके दूसरे को बड़ी खुशी होगी, अरे आओ दोस्त बहुत अच्छा प्रेम से मिलेंगे, और दूसरा उसी व्यक्ति को देख के उसके अंदर घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि की भावना। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्पांस कैसा है उस पर निर्भर करता है, रिस्पांस दूसरे का नहीं है। हमारा रिस्पांस जो है वो क्रोध लाता है या प्रेम की भावना या वाट एवर द फीलिंग्स आर देयर, इमोशंस, तो वो ये हमारा रिस्पांस उसके अंदर आता है। तो इसके लिए अब क्या करें, कभी हमारा कोई वर्क स्पॉइल हो जाता है, कोई हमारा इंसल्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है, ब्लेम करता है, और इस प्रकार की अगर फीलिंग्स होती हैं तो हमारे अंदर जो भावनाएं पैदा होती हैं वो क्रोध को जन्म दे देती हैं। इसके साथ साथ परिस्थितियां, कई परिस्थितियां भी क्रोध के निमित्त बन जाती हैं, और हमारा चीज को किसी ने यूटिलाइज किया, ठीक वे से नहीं किया, बस ट्रेन जा रहे हैं, लेट है, हमें पहुंचना बहुत जरूरी है, आदि आदि, ये जीवन की है, लेकिन कई चीजों पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, क्रोध करने से फायदा क्या होगा, उस पर हम वो कुछ नहीं कर सकते। सो देर आर वेरियस वेज, और अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे देख रहे हैं कोई आदमी ट्रेन मिस कर देता है, बस कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आई, और ये सब के कारण व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है। अब क्या करें, क्रोध के कई वेज हैं कंट्रोल करने के, कई प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जीवन भर की कमाई हमारी जरा सी देर में, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो पांच तत्व हैं, ये तत्व के कारण नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ गया, पूरा का पूरा हमारा मकान सामान सब बह गया, ये सुनामी आई, जानते हैं कैसे 2.25 लाख विद इन मिनट्स दे पेरिश्ड। इसी प्रकार से कभी भी कोई अर्थक्वेक आता है, आप जानते हैं क्या होता है अर्थक्वेक में, पूरे जीवन भर की कमाई, रिलेशनशिप, चार का फैमिली में से 2 पेरिश हो गए, खत्म हो गए, 2 बच गए, तो जो बच गए वो तो जीवन भर के लिए उन 2 की याद में ही दुखी होते रहते हैं। तो लाइक दैट, ये प्राकृतिक आपदाएं, इन पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो आवश्यकता ये है कि हम कैसे अपने को सेल्फ एम्पावर करें, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो तो आएगी आएगी, लेकिन अपने को अगर हमने शक्तिशाली बनाया हुआ होगा तो हम उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग जो चीज है, ये प्रॉब्लम है, इससे लोगों में डिस्टेंसिंग पैदा हो जाती है, संबंधों में कटुता होती है, दुश्मनी की भावना हो जाती है, लोग जिद्दी हो जाते हैं। अगर हम किसी को बार बार कुछ बोलेंगे, दूसरा पहले तो कुछ केयर करेगा, बाद में वो भी जिद्दी हो जाता है, एंड दे डोंट टेक कॉग्निसेंस ऑफ यू। तो इस कारण से ऐसे जब क्वालिटी ऑफ लाइफ जब फर्क होती है, तो इसमें सोशल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट और प्रोफेशनल उसका क्या होता है, ये सब होते हैं। अब नाउ लेट अस थिंक ऑफ कि इसके अंदर हम हाउ वी शुड डील इट। सो देर आर वेरियस वेज, इसके अंदर एक ये है, देर आर एक्चुअली ये गायन है, देर आर 9 मेजर मेथड्स, 9 वेज टू कॉन्कर एंगर। एक है, अक्सर करके क्रोध आता है, हमें पास्ट की घटना याद आती है, कोई भी चीज, किसी व्यक्ति को देखा, उसका व्यवहार हमारे प्रति पहले ऐसा रहा है, इस कारण से हमें मन के अंदर ऐसी भावना होती है। लेकिन अगर हम वास्तव में क्रोध पर विजय पाना चाहते हैं, तो पहले अपने भूतकाल के ऊपर वो हम विजय पाए। हमारी भारतीय संस्कृति बोलती है, कबीरदास जी बोल के गए हैं ना, चक्की का उदाहरण, हाँ, कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो ये जीवन के 2 पार्ट कौन से हैं, एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। या तो हम भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, या फिर भविष्य की चिंता, अरे भाई अभी रिसेशन हो गया, इतना हो गया, मनी वैल्यू डाउन, मेरे शेयर्स का ये हो गया, तो उसमें सॉरी, तो उसको देखें, अंडरस्टैंड करें, प्लानिंग करें, लेकिन भविष्य की चिंता में हम जो है ना उसमें डूबे ना रहे। तो ये बड़ा अच्छा कहा है कि भूतकाल और भविष्यकाल ये दो पार्ट हैं, चक्की जैसे पुराने जमाने में हाउस वाइफ माताएं चक्की चलाते थे, अनाज डालते थे तो अनाज पिस के निकलता था, लेकिन बीच में जो अनाज रह जाता था वो साबुत रह जाता था थोड़ा सा। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका न कोई। तो वो खूंट क्या है? दैट इज प्रेजेंट, वर्तमान। एक ट्रिक यह है कि हम वर्तमान में जीना सीखें, भूतकाल से हम सबक लें, वर्तमान में जिए और भविष्य की प्लानिंग करके आगे बढ़ते चले। बस अगर हमारा आज अच्छा हो गया, टुडे प्रेजेंट, तो कल ये पास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट अच्छा कर लिया हमने तो पास्ट हमारा अच्छा हो ही गया, क्योंकि वो पास्ट हो गया। और जिसका प्रेजेंट और पास्ट अच्छा है उसका फ्यूचर अच्छा होगा ही होगा। तो इस कारण से एक तो हम पास्ट का उससे हम सबक लेके आगे बढ़े। और बड़ा अच्छा इसके लिए है कि एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का चैप्टर होता है, कराते हैं, तो उसमें हम यही सीखें। क्या हमारा इंस्टीट्यूशन में बताते हैं कि हर व्यक्ति इस सृष्टि पर पार्ट प्ले कर रहा है, खेल खेल रहा है, मैं भी खेल खेल रहा हूं, हर एक नाटक, ये सृष्टि नाटक में है, लेकिन हर एक को पार्ट मिला हुआ है अपना, और कोई हीरो का पार्ट है, कोई विलेन का पार्ट है। अब फिल्म है, कोई शूटिंग हो रही है, अब दोनों हीरो हैं, मानो पुराने जमाने के हीरो हैं, अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, मानो दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन एक फिल्म में एक को पार्ट मिला है हीरो का, दूसरे को विलेन का, तो वो लड़ेंगे भी झगड़ेंगे भी, लेकिन उनके माइंड में ये क्लैरिटी है कि भाई वी आर अदरवाइज फ्रेंड, ये तो फिल्म में पार्ट मिला है, एक हीरो है एक विलेन है, और यहां पर, और इसके बाद जब शूटिंग हो गई फिर कपड़े बदलेंगे, एज ए फ्रेंड घर चले जाएंगे। बस यही एटीट्यूड अगर हमारा भी जीवन में रहता है तो किसी का पार्ट देख करके हमें गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि नाटकशाला में उसको पार्ट ही मिला है क्रोध करने का, उसका पार्ट ही है ये ऐसा जो मुझे लाइकिंग नहीं है हो रहा है, मुझे लाइक नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसे देख करके हम न कहें, क्योंकि हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, और इसीलिए उसके पार्ट में हम इंटरफियर क्या करें। तो इसलिए इसके लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में आता है, आई एम ओके यू आर ओके, उसका भी पार्ट ठीक है, मेरा भी पार्ट ठीक है, हर एक का। नहीं तो होता क्या है, हमें यह होता है आई एम ओके, ही इज नॉट ओके, तो क्रोध आता है, बस उसका पार्ट ठीक नहीं है, वो क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये जब नहीं होगा, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीबडी इज ओके, तो जीवन में हमेशा खुशी और मधुरता रहेगी। एक ये मेथड है कि हम सदा पास्ट को समझ करके वर्तमान में जिए और आगे बढ़ते रहे। दूसरा है कि नो वेयर यू आर, आपको ये मालूम रहे कि आप कहां पर हैं। हाँ? बड़े अच्छा, एक इसमें भी कहानी होती है, भाई एक व्यक्ति था, दुकानदार था, बस अपना दुकान पे थोड़ा नींद ले रहा था, हो सकता है यहां भी कोई ऐसे ही नींद ले रहे हो, कभी कभी आवाज भी आ जाती है, हा? लेकिन स्वाभाविक है। तो उसके पास एक व्यक्ति आया, अरे भाई वो तो बेच रहा था, सब्जी बेच रहा था, क्यों भाई तुम सो रहे हो, सब्जी बेचो ये? कि हाँ, बोलिए क्या चाहिए? तो वो व्यक्ति शायद कोई ट्रेनर रहा होगा कहीं, मैनेजमेंट ट्रेनर, या देखो भाई तुम सब्जी बेचोगे, ये सब्जी अगर सारी बिक जाएगी फिर क्या करोगे, फिर मैं और सब्जी लाऊंगा, भाई तुम देखो और बेचोगे, फिर तुम्हारी अभी तो रेडी है, फिर दुकान कर लोगे, फिर दुकान कर लोगे, उसके बाद और बिकता रहेगा, होलसेल कर लोगे, अभी तुम दिन भर में मानो 500 रुपया कमाते हो, फिर तुम 5000 कमाओगे, 10000 कमाओगे, ऐसे करके अच्छा फिर क्या, फिर तुम बहुत ठाट से रहोगे, अभी कहा, अभी तो भाई मैं उस झोपड़पट्टी में रहता हूँ। अच्छा फिर तुम्हारा आलीशान बंगला होगा, एसी होगा, फिर क्या, दुकानदार पूछता है, फिर क्या, आराम से सोओगे कि वही तो मैं कर रहा हूँ अभी। तो जब इतना सब ताम झाम करके मुझे सोना ही अगर है तो अभी भी मैं आराम से सो रहा हूँ। तो इस कारण से हमारा वेयर वी आर और हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में, अगर ये क्लियरिटी होती है तो व्यक्ति को कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होगा और क्रोध नहीं आएगा। एक तीसरी बात यह है कि ऐसा होना चाहिए, गिव पीस ए चांस। देखो, हम केवल जब दूसरे का देखते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम राइट, तो दूसरे की चीज खराब लगती है, क्रोध। अभी 10-12 दिन पहले इंटरनेट से एक स्टोरी आई थी हमारे कंप्यूटर पर, मैं देख रहा था तो बड़ा टची थी। एक आदमी ने नई कार खरीदी थी, बहुत नई कार, नई चीज होती है, थोड़ा उसके प्रति अट्रैक्शन रहता है, तो बस रोज देखता था, घूमते थे, फैमिली को घुमाता था। उसका बच्चा था 3-4 साल का, तो एक दिन देखा उसने कि बच्चा जो है कार पर कुछ स्क्रैच कर रहा है, स्क्रैचिंग। तो देखा कार में निशान पड़ गए थे, स्क्रैच हो गया, बहुत गुस्सा आया एकदम उसे। बस तुरंत ही वहां पर रिंच वगैरह रखे थे कार के ही, वो क्रोध से बच्चे का हाथ पे ना एकदम गुस्सा करके अपने ही बेटे के ऊपर बहुत बार 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 उसने उसे हाथ पर करा। जब उसका थोड़ा क्रोध शांत हो गया, सब आए, उसे लेके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाके देखा, डॉक्टर ने देखा, बहुत कोशिश करी लेकिन ये हड्डी वगैरह क्रश हो गई थी और उसे काटना पड़ा। बस वो तो क्रोध में उसने ये कर दिया। फिर जब बच्चा थोड़ा एनेस्थीसिया उससे बाहर आया और देखा, पापा मेरी ये उंगली कब ग्रो करेंगी, जब उसे देखा ये तो खत्म हो गई है, पापा कब ग्रो करेंगी, ये कब बढ़ेंगी उंगलियां। तो बहुत ही उसे अंदर फील होने लगा, अंदर ही ग्लानी होने लगी। वो आया, कार के पास आया, कार में जो बच्चे ने स्क्रैच करके लिखा था, डैड आई लव यू, ये स्क्रैच करके उसने अपने, तो उसको इतनी ग्लानी हुई, घर के अंदर गया, ही कमिटेड सुसाइड, अपने को आत्महत्या कर ली। तो ये अभी 10-12 दिन पहले ही एक स्टोरी ये आई थी। तो देखिए, उसने लिखा आई लव यू और ये तो बच्चे की फीलिंग जैसी होती है, लेकिन उसने गुस्से में क्रोध करके क्रश कर दिया और देन अल्टीमेटली एंड क्या हुआ, देखिए। तो इसका भाव क्या है स्टोरी का, कि एक्ट एकदम उसमें नहीं, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। कभी भी कोई भी चीज होती है, हमारा जैसा रिएक्शन होता है ना, फिर हमें जीवन भर कई बार पछताना पड़ जाता है। इसीलिए सी द थिंग्स नॉट ओनली फ्रॉम योर एंगल बट फ्रॉम अदर्स एंगल ऑल्सो। दूसरा का क्या भाव है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब बच्चे का कितना भाव, जब भी बच्चे बोलता था, बच्चा तो यही समझता था, कभी बोलते हैं डैड आई लव यू, वो भी बोलता था हाँ बेटे आई टू लव यू, हमेशा। तो बच्चे ने यही सोच के पापा हमेशा ऐसे बोलते हैं, उसने स्क्रैच कर दिया। उसने सोचा पापा इसमें भी मुझे कहेंगे अरे, लेकिन क्या हुआ देख। तो कहने का भाव क्या है कि ऑलवेज ट्राई टू सी द सिचुएशन फ्रॉम अदर्स एंगल ऑल्सो एंड नॉट फ्रॉम अवर ओन एंगल। इसलिए ये कॉजेज ऑफ एंगर, ये 2-3 चीज आपने देखी, अब इनमें देखिएगा कौन सी चीज आपको, दूसरे का बिहेवियर, दूसरों को कंट्रोल हम करना चाहते हैं, कोई झूठ बोलता है तो हमें क्रोध आ जाता है, अन्याय होता है हमारे साथ, ये सब चीजों के ये कारण हो सकते हैं। और कॉजेज ऑफ एंगर, डिससेटिस्फेक्शन, ओवरवर्क वगैरह, इसके अंदर जो होते हैं सिक, कोई बीमारी, कई बार दूसरों का क्रिटिसिज्म, ये वगैरह चीजें होती हैं, ये भी कई बार हमारे क्रोध का कारण। अब स्टेप टू ओवरकम एंगर, जैसे मैं आपको बता रहा था 2-3 स्टेप, ऐसे ही क्रोध को पोस्टपोन कर, कभी क्रोध आए क्या करेंगे, दुनिया में भी कई मेथड बताते हैं ना। हाँ, एक तो आपने बताया, क्या करेंगे अगर क्रोध आए तो, कई बार कहते हैं ठंडा पानी पी लो, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर डाउन होगा ये। दूसरा गिनती गिनना, उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। सीधी गिनती तो फटाफट गिन लेंगे, उल्टी गिनती से क्या पर्पस क्या है? टू अर्न द टाइम, टाइम आप उल्टी गिनती गिनेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, उतने टाइम में क्रोध हमारा शांत हो जाएगा। मतलब दिस इज द मेथड ऑफ पोस्टपोनिंग अवर एंगर, और इसीलिए टाइम का जैसे बताया वो क्रोध को बेस्ट उसी दिन अगर कोई काम है किसी पर आ रहा है, पोस्टपोन इट बाय वन डे इफ नॉट बाय वन आवर और इफ नॉट पॉसिबल बाय द, बट द बेस्ट थिंग इज अवेयरनेस, जागृति उसके प्रति रहे कि मुझे क्रोध नहीं करना है। और क्रोध आता तब है जब असंतुष्टि होती है, जैसे बताया ना इच्छाएं, तो उस इच्छा संतुष्टि या असंतुष्टि लाती है। तो जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती, असंतुष्टि होती है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, वो क्रोध का कारण होता है। तो इसीलिए उसको हम देखें और ओवर एंगर को और क्या करें, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड, जो बताया ना अपने एंगल से ही ना देखें, हम दूसरे के एंगल से भी उस चीज को देखें। फिर एक बात होती है एटीट्यूड व्यक्ति का, जो है जैसे आपको बताया सारी चीज निर्भर करती है हमारी एटीट्यूड पर, हमारे क्या दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण अगर हमारा पॉजिटिव है हर चीज, दूसरा अगर गलत भी कर रहा है ना वो हमें सही हमारा, वो आपने सुनी होगी वो कहानी भी चिड़िया की ना, एक कहानी कहते हैं भाई एक बार जंगल में आग लगी, तो जंगल में आग लगी, सब लोग दौड़े दौड़े पानी लाओ भाई बाल्टी लाओ आग बुझानी है, तो सबने देखा एक छोटी सी चिड़िया बस नल के पास जाती थी, वहां कुछ दो चार बूंद पानी, उसने पानी को चोंच में दबाया और फिर जाके आग के पास वहां छोड़ देती थी। फिर आई, फिर जो भी चिड़िया की चोंच में कितना पानी आएगा वो आया, वो आके वहां जा, सबने देखा बोला तुम ये क्या कर रही हो, तो उसने बड़े नशे से कहा मैं आग बुझा रही हूं जो आग लगी है। तो उससे पूछा गया कि तुम समझती हो क्या कि तुम्हारा जो इतनी भयंकर आग लगी हुई है तो तुम्हारे इस चीज से आग बुझेगी। बड़ा अच्छा कहा उसने कि ये तो मुझे मालूम नहीं कि इससे आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा, न कि आग लगाने या देखने वालों की लिस्ट में। बस यही हमारा जीवन में एटीट्यूड रहे, चाहे मेरा कंट्रीब्यूशन मिनिमल हो जो हो, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन में है तो वो मुझे ऊंचाइयों की सीमा तक ले जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि मेरा, मैं दूसरे को ना देखूं, दुनिया वाले तो कोई सुधरते नहीं भाई यहां आके, लेकिन मैं अपने को अगर करूंगा, देखो बाबा भी है, आज हम गर्व से कहते हैं हमारे पूरे पांचों कॉन्टिनेंट में 8000 से ज्यादा सेंटर है, लेकिन जब 1936 में ये संस्था शुरू हुई थी, बाबा ने जब शुरू, बाबा अकेले थे, उनके माइंड में बस ये आया कि मुझे बदलना है। बाबा ने पहले अपना जीवन बदला, बाबा का जीवन बदलने से दूसरों का जीवन बदला, परिवार का बदला, फिर ये सत्संग शुरू हुआ ओम मंडली के नाम से, वो सब आपने सुना होगा या सुनेंगे, और इस तरीके से बढ़ते हुए आज ऐसी स्थिति आ गई कि पांचों कॉन्टिनेंट में इतने हैं, हमारे 130 से अधिक देशों में इसकी ब्रांचेस है। तो हम बस यही देखें कि हमारा एटीट्यूड क्या है, दृष्टिकोण। इसमें एक हंसी की बात हमें याद आती है कि एटीट्यूड, एक प्रोफेसर साहब एक लेक्चर कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, सुना होगा आपने शायद, तो मेडिकल कॉलेज में भाषण कर रहे थे कि शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं, अल्कोहल से, कंजम्पशन से। तो उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, एक गिलास में उन्होंने पानी लिया और दूसरे गिलास में अल्कोहल लिया। तो प्रोफेसर साहब ने उसे दिखा के क्या करा, एक छोटा सा कीड़ा लिया, कीड़ा और पानी जिस ग्लास में था उसमें डाला, कांच का ग्लास था, देखा सबने कीड़ा तैरने लगा, तैरता रहा, कुछ नहीं हुआ, कीड़े को निकाल के उन्होंने रख दिया। सुनाया आपने ये? फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब ने दूसरा ग्लास जिसके अंदर अल्कोहल थी उसे लिया, उसमें वो कीड़े को डाला, तो अल्कोहल शराब में जैसे कीड़ा गया वो जाके थोड़ा झूमने लगा, नथिंग न्यू, बड़े बड़े पी के झूम जाते हैं, ये तो छोटा कीड़ा ही था और एक दो पे उसके अंदर पेट में चला गया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो कीड़ा एकदम शांत हो गया, प्रोफेसर साहब ने उसको हिलाया, देर वॉज नो लाइफ, उसके अंदर कोई भी जीवन नहीं था, कीड़ा मर गया, और मरा ही नहीं, धीरे धीरे कीड़े का शरीर अल्कोहल में घुलने लगा। तो प्रोफेसर साहब ने ये एक्सपेरिमेंट दिखा के स्टूडेंट से पूछा कि पानी में तो देखो कुछ नहीं हुआ और ये अल्कोहल में, ये इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो सब स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट पीछे हाथ खड़ा किया, सर बताऊं? हाँ बताओ। बस जो जानते हैं वो हंस रहे हैं। उसने कहा कि सर इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, शराब पियेंगे, हमारे पेट के सब कीड़े वीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। तो ये जो है, जैसा एटीट्यूड, जैसा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है, भाई ये बहुत क्रोधी है, उसने बहुत बार क्रोध जीवन में किया इसलिए हमारे माइंड में वो इम्प्रेशन हो गया, लेकिन किस इवेंट में, किस वजह से वो हुआ वो हमें पूरा नहीं मालूम होता कोई एकदम, इसलिए हमारे माइंड में वो इम्प्रेशन हो जाता है। तो दृष्टि हमारी, अगर लाल चश्मा चढ़ाया होगा सब लाल लाल नजर आएगा, नीला चश्मा होगा सब नीला नीला नजर आएगा। तो इसलिए अभी हमारा यही होगा, इसके अंदर एक ये है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। बस हम क्या है, दूसरे को ना क्रोध क्यों आता है, हम क्षमा नहीं कर पाते। अगर हम जीवन में भूलना, वास्तव में हर मनुष्य जब पैदा होता है तो वो दो शक्तियां हरेक के पास होती हैं। कौन सी दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये दो शक्तियां हरेक के पास होती हैं। लेकिन ट्रेजेडी क्या है लाइफ की, कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं और जो भूल जानी चाहिए वो हमेशा याद रहती है। मानो मेरा आपका कुछ मनमुटाव हुआ, भाई भूल जाना चाहिए, अदरवाइज वी आर गुड फ्रेंड, चलो एक बार थोड़ा मनमुटाव हुआ भूल जाना, वो बात तो हमें याद रहेगी। लेकिन जो याद रखने वाली बातें हैं, अक्सर होता है घर से आप नौकरी धंधे पर गए, घर में मिसिज ने बोला भाई लौटते वक्त ये ले आना, और 90% कई बार हैं भूल जाते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो अभी आवश्यकता ये है, और भूल क्यों जाते हैं और कुछ बातों को भूल क्यों नहीं पाते, किसी ने वो करा तो उसको भूल क्यों नहीं पाते, क्योंकि उसे हम क्षमा नहीं कर पाते जीवन में। किसी ने कुछ कहा वो बात उसकी छुपती रहती है। इसीलिए महापुरुषों का एक बहुत बड़ा गुण जो बताया है, क्षमा का। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाएगा दूसरे को, और जिसके अंदर एक्चुअली इनर एम्पावरमेंट होगी वो क्षमा। हमने देखा कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूलें भी हो जाती हैं हमारे यज्ञ में। दादियां जो हमारे निमित्त दादा भाई बहने हैं वो देखते हैं समझते हैं, लेकिन उसको शिक्षा भी दी, परिवर्तन कराया, और उसके बाद जैसे उनकी स्मृति में ही वो बात नहीं रहती, भूल जाते हैं। ये भूलना भी जीवन की एक बहुत बहुत बड़ी कला है। और ये भूलने की शक्ति भी आती कैसे है, जब हम अंदर मेडिटेशन और अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट एक जीवन के अंदर होता है। दूसरी बात, लाइफ के अंदर ना ये हम जब क्रोध आता है, जैसे आपको फेंसिंग का बताया, हम मॉनिटर नहीं करते इसलिए हमारी चीज इंप्रूव नहीं होती। हम उसे लिख दें या भाई आज इतनी बार क्रोध आया, जब लिखेंगे वो 10 बार क्रोध आया, 12 बार आया, अटेंशन रहता है। फिर अगले दिन जब जैसे ही क्रोध आएगा, आने वाला होगा, तुरंत उसमें ये लिखा जाएगा भाई ये मुझे रात को लिखना पड़ेगा डायरी में, उस वक्त कंट्रोल। तो वी कैन कंट्रोल, देयर आर 3 स्टेप्स, एक बिफोर द एंगर कम्स, एक ड्यूरिंग द एंगर, एक आफ्टर द एंगर। इस स्टेप से अगर हम चलते हैं तो हमारा धीरे धीरे कंट्रोल उसके ऊपर हो जाता है। एक बात और है, फूड हैबिट्स। अक्सर देखा जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या बोलती है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसीलिए सतो गुणी अन्न के ऊपर महत्व दिया गया है। जो अन्न नॉन वेज होता है, इवन हम उसको प्याज लहसुन वगैरह को भी बोलते हैं, देखो उसके काटने में ही आंख में आंसू आ जाते हैं, तो इतना तमोगुणी है। तो उसे जब सेवन करेंगे तो आत्मा के अंदर किस प्रकार से ये काम क्रोध लोभ ये जो अधिकतर हैं, ये हमारी फूड हैबिट्स, इन सब के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करते हैं। तो इस कारण से फूड हैबिट्स भी हमारी जितनी सात्विक होती जाएंगी, उतना उतना हमारा इन विकारों के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल होता जाएगा। तो रिमेम्बर सम स्लोगन्स, कई कह देते हैं क्या करें, वो क्रोध कर रहा था मुझे भी करना पड़ा। लोहा लोहे को काटता है, लेकिन भाई कौन सा लोहा काटता है, ठंडा लोहा जो होता है वो गर्म लोहे को काटता है, गर्म करके उसे मोड़ा जाता है, लोहे को काटा जाता है, खाली ठंडा होगा वो नहीं। तो अगर हम कूल होंगे, ठंडे होंगे, तो जो क्रोध कर रहा है, क्रोध की अग्नि है, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक ये रहे। दूसरा, यहां पर बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन मिलते हैं, आप लिटरेचर शॉप पर जाइएगा और इनमें कुछ स्लोगन ले जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, आदि आदि ये हैं। तो जो स्लोगन आप घर में अगर लगा लेंगे तो टाइम टू टाइम आपको स्मृति आती जाएगी और उस पर कंट्रोल होता जाएगा। इसके अंदर ये बताने का और प्रयास किया गया है, ये नो योर एंगर स्कोर। देखिएगा आप, ये तो खैर ठीक है, ये तो अगर चार्ट लिखते हैं, हाँ, बायोडेटा ऑफ एंगर। देखिए हर एक का बायोडेटा होता है ना, तो ये एंगर का बायोडेटा है। बर्थ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, दैट इज अननोन एंगर। फादर कौन है एंगर का, आई, एंड मदर इज माई, मैं मेरा। बट जहां मैं ईगो आता है ना, ईगो इज एट द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। और जब ये ईगो हर्ट होता है तो क्रोध आता है। डेट एंड प्लेस, क्रोध कभी जगह देख करके आता है, एनी प्लेस एनी टाइम दैट कैन कम। बर्थ प्लेस अफेक्टेडनेस, जहां भी मनुष्य का प्रभावित हुआ संस्कार है, उसका ईगो हर्ट हुआ, जहां भी कोई इफेक्ट आया तुरंत क्रोध आ जाता है। रिलेटिव्स, टेंशन वरीज डिप्रेशन, क्रोध अकेला नहीं आएगा, उसके साथ अपने को भी टेंशन आएगा, जिस पर क्रोध किया उसको भी टेंशन। और लैंग्वेज क्या है, शाउटिंग एक्सप्रेसिंग विद आईज एंड बिहेवियर। इसका टेस्ट क्या है क्रोध का, बिटर टेस्ट। और एक्सपीरियंस क्या क्या होता है सारे, उस पर हर चीज पर यह प्रभाव डालता है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अब इसमें एक दो बात अंत में बस मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर क्रोध का रिप्रेजेंटेशन वाणी से होता है, हाँ, क्योंकि जब मन में आता है उसके बाद वाणी में आता है। कहते हैं भगवान जब मनुष्य की रचना कर रहे थे ना, तो सारी सृष्टि की ब्रह्मा जी ने रचना की, सबको बना दिया, फिर मनुष्य को बनाने लगे। तो ऐसा कहानी आती है, तो भगवान ने सोचा बेस्ट क्रिएशन है मेरी, तो इसमें मैं क्या करूं, हाँ। तो कई बात सोच साच के भगवान ने कहा भाई हाँ, मनुष्य को कार्य व्यवहार में आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो चलो हाँ, इसको मैं मधुर वाणी वाला बनाता हूं, मीठी वाणी रख के। तो भगवान ने क्या करा, जीभ में हड्डी नहीं बनाई। कुदरत को नहीं थी मंजूर शक्ति इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में, किसी शायर ने यह लिख करके चला गया। लेकिन मनुष्य तो बड़ा क्रिएटिव है, उसने कहा कोई बात नहीं भगवान जी, आपने नहीं बनाई हड्डी, मैं बिना हड्डी के ही काम कर लूंगा। और वो इसीलिए क्या कह देते हैं भाई, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स, हड्डी नहीं है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है। और हम ब्लेम करते हैं, क्या करूं मैं बोलना नहीं चाहता था ये शब्द लेकिन मेरे मुंह से निकल गए ये शब्द, वास्तव में मुंह से निकलते नहीं, क्या करूं माई टंग स्लिप नहीं करती है वास्तव में, स्लिप मन करता है, पहले मन में क्रोध आता है बाद में वाणी से आता है। घर में भी फिसलने का स्कोप ज्यादा कहां रहता है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, कहां ज्यादा फिसलने का स्कोप होता है, बाथरूम गीली जगह है। अब बेचारी ये टंग जो है गीली जगह में या सूखी जगह में, मुंह में क्या है, गीला है, हम कह देते हैं माई टंग स्लिप्ड, गीली जगह है, लेकिन एक्चुअली व्हाट स्लिप्स इज माई माइंड। तो मन को, क्योंकि मन में ही क्रोध का जन्म होता है, तो मन में ही क्रोध की समाप्ति जब होती है तो बाकी आगे सब काम ठीक है। इसी के लिए मेडिटेशन आपको बताया ना, एंटीडोट, तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऑटो सजेशन। बस आप जब भी ऑटो सजेशन में ना, यहां पर आपको योग कराया जाता है ना, तो योग में यही है कि मैं आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं। बस जितना हम ऑटो सजेशन अपने अंदर शक्तिशाली देते रहते हैं उतना उतना आत्मा शक्तिशाली बनती रहती है। और इसके लिए क्या है, जब क्रोध आता है ना, इसका मतलब मन में किसी के प्रति कहीं घृणा का, ईर्ष्या का, बदले की भावना का, नीचे दिखाने की भावना, वो चीज है। तो इसीलिए मन अगर सदा खुश रहेगा तो कभी भी क्रोध नहीं आएगा। तो इसलिए मन को सदा खुश रखने की एक कला है, हैप्पीनेस, लॉ ऑफ हैप्पीनेस ये कहता है। दुनिया में तो हम कोई चीज डिवाइड करते हैं तो कम हो जाती है, मानो मेरे पे 100 रुपया है, मैंने 50 आपको दे दिया, मेरे पास 50 रहा। लेकिन लॉ ऑफ हैप्पीनेस ये है कि मैं जितना अपनी खुशी को शेयर करूंगा, बांटूंगा, उतना खुशी बढ़ती जाएगी। इसलिए जब आप यहां से जाए ना, ये दिन आपके जीवन के बड़े अनमोल दिन, दो तीन जो रहे, दो तीन चार दिन, इसको खुशी को आप खूब शेयर कीजिएगा। जितना आप ये शेयर करेंगे उतना उतना आपकी खुशी बढ़ती जाएगी और आपके मुंह से बस यही शब्द निकलेंगे, क्या, बहारों से गुजरा हूं, खुशी होती है ना जब बहार होती है, बहारों से गुजरा हूं और गुजरा हूं पस्ती से, मैं हर हाल में गुजरा हूं मगर गुजरा हूं मस्ती से। ओम शांति, ओम शांति।
तो हम अब एंगर के पहले डी तो नहीं लगाएंगे, डेंजर वाला, हमने काफी टिप्स सीख लिए हैं और मैं समझता हूं कि अब हम एंगर को कंट्रोल कर सकेंगे। काफी बातें आपको बताई गई है एटीट्यूड के बारे में, कहा भी गया कि योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर ऑल्टीट्यूड, और खाने के बारे में भी अभी विद्वान वक्ता ने भी बताया कि आपका जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। मैं एक छोटा सा अनुभव मैंने सुना था कि हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आते थे जेल सुपरिंटेंडेंट थे वो, तो एक दफे वो बता रहे थे कि मैं अपनी ट्रांसफर होके कहीं गए थे तो उनके साथ उनकी फैमिली नहीं थी, तो जेल में से किसी कैदी को भेजा था उनके रोटी और खाना बनाने के लिए। तो दो दिन तक उन्होंने कहा, मैंने जब वो खाना खाया तो मेरे में ऐसा मन वैसा उद्वेलित होता था और उसमें ऐसा गुस्सा आता था मैं किसी को मारू, किसी का खून कर दूं, तो मैंने सोचा कि मेरे ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने किसी को बुला के पूछा कि ये जो कैदी है कहां से आया, फिर कैदी से बात की कि तेरे को सजा क्यों हुई, तो उसने कहा कि मैंने मेरी माँ का मर्डर किया था इसलिए मुझे सजा हुई, तो कि तेरे हाथ की जो मैंने खाना खाया रोटी खाई है तो फिर मेरा ऐसे भाव आना ही चाहिए, तो फिर उन्होंने उसको हटाया वहां से। कहने का भाव यही है कि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, और आपको काफी टिप्स दिए हैं। जो मैं छोटी सी बात इसके बारे में कहना चाहता हूं कि अगर हमारे को एंगर इसलिए आता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें गुस्सा आता है, उसका कारण क्या है कि हमारे को रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अगर रियल अंडरस्टैंडिंग हो तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है इन द फाइनल एनालिसिस द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स लाइज नाइदर इन एक्शन नॉर इन इनएक्शन बट इन अंडरस्टैंडिंग, फॉर वेयर देर इज ट्रू अंडरस्टैंडिंग देर इज नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर अंडरस्टैंडिंग सही अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। मैं विद्वान वक्ता को बहुत बहुत